नमस्कार दोस्तों, छिंदवाड़ा वरेंद्र से पदोस योगेश। हमारा आज का विषय है 15 अगस्त, राष्ट्र को संबोधन या चुनाव प्रचार का मंच। राजनीति तय करती है कि समाज की दशा और दिशा क्या होगी। राजनीति यह भी तय करती है कि देश का भविष्य क्या होगा। इसे समाज का अगुवा माना जाता है, इसीलिए राजनीति कभी हल्के उद्देश्यों के साथ नहीं की जाती है और यह देश के सबसे बड़े पद पर बैठे लोगों से जुड़े होते हैं और उनसे और अतिरिक्त गंभीरता और सतर्कता की उम्मीद की जाती है। साथ ही देश में भविष्य की गंभीरता को महान समाजवादी नेता राम मनोहर लोहिया जी बेहद बेहतर ढंग से समझाते हुए कहते हैं कि जिंदा कौम 5 साल इंतजार नहीं करती है। आज हमारे साथ गांधीवादी लोहियावादी विचारक डॉक्टर अनूप सर जुड़े हुए हैं। अनूप सर, मोबाइल लाइन पर स्वागत सर आपका।
नमस्कार योगेश भाई, नमस्कार।
जी सर। सर, आजादी के बाद का राष्ट्रवाद और आज के राष्ट्रवाद को किस तरीके से देख रहे हैं सर आप?
आजादी के समय का राष्ट्रवाद और आज के राष्ट्रवाद में जमीन आसमान का अंतर है। आजादी के समय का जो राष्ट्रवाद था, गांधी और लोहिया का जो राष्ट्रवाद था, जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का राष्ट्रवाद था, उसका मकसद था कि भारत के अंदर जो भी अवसर उपलब्ध है वह अवसर आम जनता तक पहुंचे और गरीब के झोपड़ी तक पहुंचे। भारत के अंदर जो प्रकाश है उसकी किरणें गरीब की झोपड़ी तक पहुंचे, दुरुस्त गांव तक पहुंचे, सुदर गांव तक पहुंचे। उस समय के राष्ट्रवाद का मतलब था कि समाज और इंसान में समता हो, इंसान और इंसान में किसी प्रकार का भेदभाव न हो, ऊंच नीच न हो, छुआछूत न हो। और उस समय के राष्ट्रवाद का मतलब था कि हम अपने प्राकृतिक सीमाओं की रक्षा तो करेंगे, परंतु उसके साथ साथ हम दूसरे के सीमाओं में प्रवेश भी नहीं करेंगे और हम अपने जमीन का, अपने सीमा का सुई के नोक के बराबर भी किसी को लेने नहीं देंगे। उस समय के राष्ट्रवाद का मतलब था कि समाज में बराबरी का निर्माण करना, इंसान और इंसान के बीच में किसी प्रकार का फर्क ना हो। और आज के राष्ट्रवाद में जो आया है, आज के राष्ट्रवाद का मतलब है कि राजनीति सर्वप्रमुख और राजनीति के साथ साथ सत्ता सर्वप्रमुख। आज का जो राष्ट्रवाद है वह इंसान और इंसान के बीच में फर्क पैदा करके सत्ता पाना चाहता है। आज का राष्ट्रवाद नदियों के जल को खराब करके सत्ता पाना चाहता है। आज का जो राष्ट्रवाद है वह सत्तामय राष्ट्रवाद है, वह घर घोर से घोर पाप करके भी सत्ता प्राप्त करना चाहता है। जबकि राष्ट्रवाद का मतलब सत्ता नहीं होता है, राष्ट्रवाद का मतलब होता है कि हम अपनी सीमाओं की रक्षा करने के साथ साथ अपने लोगों के चेहरे पे खुशहाली देखें। तो आज देख लीजिए कि आज राष्ट्रवाद का मतलब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई धर्मों में बांट करके राष्ट्रवाद का मतलब दिखाया जा रहा है। जबकि भारत का संविधान धर्मनिरपेक्ष है, वह धर्मनिरपेक्षता के माध्यम से राष्ट्रवाद का निर्माण करना चाहता है। तो जो गांधी का राष्ट्रवाद था कि सिया राम मैं सब जग जानी, करहु जुर जुग जुर पानी, उनके राष्ट्रवाद का मतलब था कि सभी में समता हो, उनके राष्ट्रवाद का मतलब था कि सभी के चेहरे पे खुशी हो। परंतु आज का जो राष्ट्रवाद है यह फरका और फरकी का बीज पैदा करता है। आज का राष्ट्रवाद लोगों के बीच में असमानता स्थापित करने का राष्ट्रवाद बन गया है।
जी सर। सर, आजादी का अमृत काल मना रहे हैं और 15 अगस्त प्रधानमंत्री जी के संबोधन को किस तरीके से देख रहे हैं सर, आज के परिप्रेक्ष्य के हिसाब से सर?
इसमें थोड़ा सा मैं पीछे चलना चाहूंगा योगेश भाई,
जी सर।
कि आप सोशल मीडिया से जुड़े हैं, आप पत्रकार हैं, आप एक जागरूक युवा भी हैं। आप 2014 के बाद के भारत को पढ़िए तो जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से संचालित होने वाले लोग हैं और चाहे अपने प्रधानमंत्री जी के विचारधारा को मानने वाले जो लोग हैं, उनका यह मानना है कि 2014 के बाद ही भारत को आजादी मिली। वो 2014 के पहले के भारत को भूल जाते हैं और प्रधानमंत्री जी जो भाषण करते हैं इसी को ध्यान में रख करके भाषण करते हैं। प्रधानमंत्री जी का भाषण राष्ट्र के मन को सुनने के लिए नहीं होता है, उनका जो भाषण है अपने मन की बात दूसरे को सुनाना चाहते हैं। उन्होंने कभी राष्ट्र को सुनने का प्रयास नहीं किया। अगर राष्ट्र को सुनने का प्रयास किए होते तो मीडिया के साथ रूबरू होते, मीडिया के साथ साक्षात्कार करते, परंतु आज तक उन्होंने साक्षात्कार किसी मीडिया के साथ नहीं किए। लाल किला से जो उन्होंने चुनावी भाषण दिए हैं, तो प्रधानमंत्री जी के बारे में बौद्धिक वर्ग में यह बहस है, बौद्धिक वर्ग में चर्चा है, यह 24 आवर सातों दिन सिर्फ चुनावी मूड में रहते हैं, बाकी ये कोई काम करना नहीं चाहते। अगर इनको राष्ट्र की चिंता होती तो आप देखे होंगे कि मणिपुर में लगभग लगभग 3 महीने से घटना घट रही है, एक बार भी मणिपुर पर नहीं बोले। पूरा देश चाह रहा था कि प्रधानमंत्री जी सदन में जाकर के मणिपुर पर चर्चा करें, लेकिन मणिपुर पर चर्चा नहीं किए, और जब बोलने गए तो अपने भाषण में 2-3 मिनट बोले और उसके बाद टाल गए। खैर, वहां विपक्ष ने भी गलती किया कि अविश्वास प्रस्ताव ला करके वॉकआउट किया, लेकिन प्रधानमंत्री जी का लाल किले से जो भाषण हो रहा है वह प्रधानमंत्री के रूप में नहीं दिए, बल्कि उन्होंने एक दल के नेता के रूप में भाषण दिए। तो आज तक के जितने भी प्रधानमंत्री राष्ट्र किला से राष्ट्र लाल किला से भाषण दिए, उन्होंने देश को केंद्र में रख करके भाषण दिए, देश के हित में भाषण दिए। उन्होंने ये नहीं कहा कि हमको आने वाले दिन में चुनाव जिता दीजिए या 20 साल बाद की पॉलिसी तय करें। ठीक है, पॉलिसी तय करना चाहिए, देश के विकास के लिए पॉलिसी तय करना अनिवार्य है, परंतु प्रधानमंत्री यह कहे कि हमको जिता दीजिए, यह राष्ट्र का भाषण नहीं है बल्कि व्यक्तिगत भाषण हो जाता है। तो प्रधानमंत्री जी हमारे दो बातों में बहुत माहिर है योगेश भाई। पहला कि वो बहुत साहस के साथ झूठ बोलने की क्षमता रखते हैं, और दूसरा कि वो फोटो खिंचवाने में माहिर है। एक घटना मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश के कूनो पार्क में दक्षिण अफ्रीका से चीता लाए गए थे, और प्रधानमंत्री जी आके वो चीतों के साथ फोटो खिंचवा रहे थे, छोड़ रहे थे, उनको चारा खिला रहे थे, दूर से फोटो खींच रहे थे उनका, और मीडिया ने छापा कि प्रधानमंत्री जी ने चीते लाए। इस प्रकार से मीडिया छापा जैसे प्रधानमंत्री जी ने ही चीतों को जन्म दिया। लेकिन दूसरी घटना उसी के साथ ये घटी कि आज उन चीतों में से 9 चीते मर गए, परंतु प्रधानमंत्री जी उसकी पूछ परख नहीं लिए, एक बार भी फोटो खिंचवाने नहीं लिए। तो ये जहां देखेंगे कि हमारी वाहवाही हो रही है वहां फोटो खिंचवाएंगे। अभी 3 दिन पहले का घटना देखिए कि पूरे दुनिया भारत की वाहवाही कर रही है, पूरे दुनिया भारत के वैज्ञानिकों को प्रणाम कर रही है। चंद्रयान हमारा चंद्रमा पे गया है, और हमारे प्रधानमंत्री जी उसमें संबोधन करने लगे। अरे भाई, वो पद था वैज्ञानिकों को बोलने के देने के लिए, आप बोलना शुरू कर दिए। तो ये प्रधानमंत्री जी किसी भी अवसर को छोड़ना नहीं चाहते, और हर अवसर में चुनाव देखते हैं, हर अवसर में सत्ता देखते हैं। तो लाल किले से अगर सत्ता को लेकर के और चुनाव को लेकर के भाषण दे रहे तो बाकी प्रधानमंत्रियों का ही अपमान कर रहे हैं, एक प्रकार से देश और राष्ट्र का अपमान कर रहे हैं।
जी सर, आपने अभी चंद्रयान की बात की, तो उसके पूर्व भी कई जो मिशन थे इसरो के,
बिल्कुल,
वह लॉन्च किए गए थे। क्या उसके पहले के जो प्रधानमंत्री थे उनका उनका जो व्यक्तित्व था, उनका जो राष्ट्रवाद था, और अभी वर्तमान परिस्थितियों को देखें तो किस तरीके से सर देख रहे हैं सर आप?
हमारे देश के अंदर संसदीय व्यवस्था है
जी,
और संसदीय व्यवस्था के अंदर प्रधानमंत्री की भूमिका अहम है
जी,
इसको नकारा नहीं जा सकता। परंतु एक गार्जियन का यह कर्तव्य बनता है कि यदि हमारे घर का कोई सदस्य अच्छा काम कर रहा है तो उस सदस्य को हम वाहवाही दे, उस सदस्य को मौका दे बोलने के लिए। बाकी प्रधानमंत्रियों ने यही काम किए। बाकी प्रधानमंत्रियों ने क्या किया कि अगर इसरो ने अच्छा काम किया तो उनको आगे किए, उनको बोलने का मौका दिए, और प्रधानमंत्रियों ने एक औपचारिकता के रूप में उनको धन्यवाद दिए और बोले कि आप भविष्य की तैयारी करिए, हम आपके साथ हैं। परंतु वर्तमान के जो हमारे प्रधानमंत्री जी है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, यह हर अवसर पे अपना फोटो चिपकाना चाहते हैं कि देख लो भाई, हमारे सिवा कोई यह कर ही नहीं सकता है, और इनके लोग कहते भी है कि मोदी है तो मुमकिन है। तो ये उस नारे को भुनाना चाह रहे हैं। बाकी इनके पास कोई विजन बहुत अच्छा नहीं है। अगर विजन होता तो 21वीं शताब्दी में यह एक नारा देते है कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, और मणिपुर में 2 महिलाओं को नंगे घुमा करके परेड करा दिया गया, उस पर इन्होंने नहीं कहे। और उस पर सत्ता ने क्या कही योगेश भाई, आपको पता होगा कि सत्ता के लोगों ने कहा है, सत्ता ने कही है कि जो लोग वीडियो वायरल किए हैं उनको गिरफ्तार किया जाएगा। अब बताइए, ये प्रधानमंत्री जी का विजन है, ये सत्ता का विजन है कि जो लोग सही बोलेंगे उनको जेल में डाल दिया जाएगा? इनके कहने का मतलब है कि आप वीडियो क्यों वायरल कर दिया? अरे भाई, उसने तो सही काम किया ना, तो बोल रहे कि नहीं हम उनको गिरफ्तार करेंगे। तो इनको क्या है, इनको अपनी वाहवाही लेना है, इनको अपने चुनावी मूड में रहते हैं, इनको चुनाव जीतने के लिए काम करना पड़ता है, या विजन वगैरह नहीं देखते हैं। इनको सिर्फ लगता है कि हम संसद पे कब्जा कैसे कर ले, हमारी सीटें कैसे बढ़ जाए, हम जीत कैसे जाए। और इनका भाषण भी देखिए तो उसी प्रकार से भाषण होता है, ये भाषण सिर्फ गोल गोल घुमाते हैं, कोई साफ बात नहीं रखते हैं कि इनको करना क्या है और कहना क्या है। तो देखिए कि इनके दौर में एक तरफ अरबपतियों की संख्या बढ़ रही है तो दूसरी तरफ गरीबों की भी संख्या बढ़ जा रही है, असमानता कम नहीं हो रही है। हमारे प्रधानमंत्री जी चाह रहे हैं इनका बस चले ठीक से तो इसरो पे भी किसी पूंजीपति के अधिकार को स्थापित कर देंगे ये।
जी सर, आपने अभी कुछ ही समय पहले कहा था कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के माध्यम
जी
से
बिल्कुल
2014 में स्वतंत्रता मिली। सर तो ये सर क्या हमारे देश के युवा हैं, हमारे देश का इतिहास पढ़ा है क्या? सर ये कहना कितना उचित लग रहा है सर आपको?
देखिए, ये वही व्यक्ति कह रहे हैं जो प्रधानमंत्री जी के अंधभक्त है, जो प्रधानमंत्री जी से सवाल नहीं करना चाहते। प्रधानमंत्री जी ने बोल दिए कि नहीं रात नहीं हुई है, दिन निकल गया है, तो ये लोग बोलेंगे कि हाँ हाँ दिन निकल गया है, हमारे प्रधानमंत्री जी ने बोल दिए कि दिन निकल गया है। तो ये तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे मैसेज बनाया जाता है और मैसेज को डाला जाता है, और जो इनके ग्रुप बने हैं अंधभक्तों की, वो पूरे अंधभक्त इसको छाए हुए हैं। तो वो जो अंधभक्त है, न वो इतिहास पढ़ना चाहते हैं और न इतिहास की वो समझ रखते हैं। और उन अंधभक्तों में योगेश भाई ऐसा नहीं कि कम पढ़े लिखे लोग हैं, उसमें बहुत पढ़े पढ़े लिखे लोग हैं। बहन कंगना रनौत जैसे लोग हैं जो कहती है कि 2014 के बाद ही आजादी मिली है। ना ये लोग इतिहास पढ़ते हैं, ना इतिहास समझना चाहते हैं, और ना ही इतिहास से कुछ सीखना चाहते हैं। ये तो एक प्रकार से अंधभक्त होकर के माननीय प्रधानमंत्री जी जो कह दिए वही सही है। तो ये वही कहते हैं जो वहां से इनको आदेश होता है, इनका अपना कोई दिमाग नहीं होता है। यूथ को चाहिए कि अपने दिमाग का प्रयोग करे, उस पे सोचे, कुछ किताबों को पढ़े और उसके बाद जाकर के सही आकलन करे कि सही है या गलत है। आपने राम मनोहर लोहिया जी का जिक्र किए थे, राम मनोहर लोहिया जी ने कहा था कि जिंदा कौम अन्याय को बर्दाश्त नहीं करती है, और उन्होंने यह भी कहा था कि सरकार को तवे पर पड़ी हुई रोटी की तरह पलटते रहना चाहिए, नहीं तो रोटी जल जाएगी। तो आज जरूरत है कि यूथ डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के सप्त क्रांति को पढ़े, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को समझे, और तब जाकर के समझे कि वास्तव में सत्ता किसके लिए होती है। क्योंकि गांधी जी ने भी कहा है कि राजनीति अन्याय को मिटाने का साधन है, राजनीति न्याय स्थापित करने का साधन है, और डॉक्टर लोहिया ने कहा कि राजनीति अल्पकालिक धर्म है और धर्म दीर्घकालिक राजनीति है। इसलिए जो भी आज बदलाव होगा वह राजनीतिक बदलाव होगा। इसलिए युवाओं को चाहिए कि दिमाग खोल करके अपनी बात को रखें और अधिक से अधिक मात्रा में राजनीति में प्रवेश करें।
जी सर, सर 2014 के जो भाजपा का मैनिफेस्टो था जिसमें सौ स्मार्ट सिटी हो या काला धन हो,
जी,
ऐसे मुद्दों को आज धरातल पर किस रूप में देख रहे हैं सर आप?
मैं इस धरातल से थोड़ा सा पीछे ये चलना चाहूंगा कि गांधी जी ने कहा था कि भारत गांवों का देश है और
जी
भारत की आत्मा गांवों में बसती है। तो पहली बार तो जो उनका नारा था स्मार्ट शहर का, वो नारा ही गलत था।
जी
लेकिन आज वो नारे का कब्र तो स्वयं प्रधानमंत्री जी खोद दिए कि वो नारा कहाँ गया पता ही नहीं चल रहा है। दूसरी बात, आप बोल रहे थे काला धन के लिए, उसी काला धन को लाने के लिए एक बाबा है रामदेव जी, जो बाबा कम व्यवसायी ज्यादा है, उन्होंने आमरण अनशन किए थे कहाँ पे, वो रामलीला मैदान में। और जब पुलिस वाले ने पकड़े उनको तो महिलाओं का ड्रेस पहन के भगने लगे, वो बोलते थे कि काला धन आ जाएगा। लेकिन आप देख लीजिए कि 9 साल हो गई सत्ता में आए हुए, बाबा रामदेव जी एक बार भी आंदोलन नहीं किए। तो इस प्रकार से लग रहा है कि बाबा रामदेव जी जो आंदोलन किए वह जनता को छलने के लिए, जनता के छल और कपट के लिए उन्होंने आंदोलन किए, ताकि झूठ बोल करके वोट लिया जाए। इनका सिर्फ और सिर्फ वह जुमला था और उसी जुमले के बल पे इन्होंने सरकार बनाया। बाकी इनके पास कोई बहुत बड़ा ये नहीं है जिससे ये बदलाव कर सकते हैं, चाहे वो बाबा रामदेव हो चाहे मोदी जी हो। तो इनका मैनिफेस्टो, और जिसको आप मैनिफेस्टो कह रहे हैं, अब तो उससे आगे चले गए योगेश भाई, अब तो उसको ये कह रहे हैं कि हमारा वचन पत्र है।
जी
कांग्रेस भी कह रही है कि वचन पत्र है, ये भी कहते हैं कि वचन पत्र है। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो इनका वचन पत्र जो है ना, वह पूरी तरीके से एक रेवड़िया सिस्टम बन गया है और उसी को ये भुनाना चाहते हैं। और जब सत्ते में आ जाते हैं तो वचन पत्र को फाड़ करके फेंक देते हैं और कहते हैं कि ये तो 5 साल के लिए है, देखा जाएगा। तो इनका वचन पत्र नहीं है बल्कि जनता को ठगने का एक ही पत्र बनाते हैं। तो इनके वचन पत्र पर न ध्यान देते हुए अपने को तो राष्ट्र गांधी के सपनों के भारत बनाने पर अपने को प्रयास करना चाहिए।
जी सर, सर मेरा अंतिम सवाल है और संक्षिप्त
जी
इसका जवाब चाहूंगा सर। निरंतर महंगाई बढ़ती जा रही है, चाहे
जी
पेट्रोल हो, डीजल हो, बेरोजगारी हो, या सर निरंतर 2014 के बाद में क्यों बढ़ रही है, साथ में बेरोजगारी का जो संकट है वो निरंतर बढ़ता जा रहा है, युवा भटक रहा है, साथ में महंगाई सर गेहूं से लेकर पेट्रोल
जी
डीजल हर चीज में महंगाई होती जा रही है सर, इसको किस तरीके से देखते सर?
मोदी जी और देश की जो संसद है और हमारे देश के जो नेता है, दो बातें समझना होगा योगेश भाई, कि आज देश की संसद और विधानसभाओं को कारपोरेट जगत चला रहा है, चुनाव महंगा करके हमारे नेता चुनाव लड़ रहे, तो ये पैसे कहाँ से आ रहे हैं? कारपोरेट से आ रहे हैं। कारपोरेट इनको पैसे क्यों दे रहा है? तो उसको इनको लाभ पहुंचाना है, पहली बात। दूसरी बात कि बाजार पे नियंत्रण नहीं कर पा रहे, बाजार को ये खुली छूट दे दी है कि आपको जो इच्छा हो वो तय करिए। आप पत्रकार है और किसान भी है, आप बताइए कि आप कपास का खेती करते हैं, क्या कपास के भाव को आप तय करने का अधिकार है? बिल्कुल नहीं है। परंतु अगर बाबा रामदेव जी व्यवसायी है, तो अगर वो एक डाबर, अगर वो एक मधु बनाते हैं, क्या बोल, शहद बनाते हैं, तो उसका भाव तय करते हैं। तो पूंजीपतियों को तो इन्होंने भाव तय करने का अधिकार दे दिए, लेकिन किसान और आम जनता को भाव तय करने का अधिकार इन्होंने नहीं दिए। तो आज महंगाई इसलिए बढ़ रही है कि इन्होंने बाजार को खुली छूट दे दी है। बाजार और मांग और उत्पादककर्ता में, छोटे उत्पादन में कोई अंतर नहीं इन्होंने किया है। इन्होंने एकदम 100 और 10 का अंतर कर करके लेके चल रहे हैं कि किसान को हम 1.5 गुना देंगे और पूंजीपतियों को हम 500-600 गुना देंगे। यह महंगाई बढ़ने का पहला कारण है। दूसरा, आपने कहा बेरोजगारी का सवाल, तो आप देख लीजिए कि रोजगार के जितने भी सेक्टर थे उसको तो ये निजीकरण में भेजते जा रहे हैं। रेलवे हो गया, डाक हो गया, BSNL हो गया, बड़ी बड़ी कंपनियां हो गई, जो नवरत्न कंपनियां कही जाती थी, उसको तो ये पूरी तरीके से निजी हाथों में देते जा रहे। तो जब निजी हाथों में देंगे तो रोजगार कहाँ से पैदा होगा? और रोजगार पैदा करने का जो सबसे बड़ा साधन होता है, आप नीति निर्देशक तत्वों को पढ़ लीजिए, गांधी को पढ़िए, लोहिया को पढ़िए, उन्होंने कहा कि रोजगार का सबसे बड़ा साधन है कुटीर उद्योग और लघु उद्योग। तो आप देख लीजिए कि एक प्रकार से कुटीर और लघु उद्योगों को धीरे धीरे समाप्त करते जा रहे हैं, इसलिए कि इनको चंदा पूंजीपतियों से मिलता है, चंदा कारपोरेट से मिलता है, तो जितना कारपोरेट कहता है उतना ही ये काम कर रहे हैं। तो महंगाई इसलिए बढ़ रही है कि कारपोरेट की संसद हो गई है, बेरोजगारी इसलिए बढ़ रही है कि कारपोरेट की संसद हो गई है। कहा जाता है कि जब देश का नेता अमीर होता है तो जनता दुखी होती है, और जब देश का नेता गरीब होता है तो जनता सुखी होती है। आज देख लीजिए कि देश भर की विधानसभाएं और देश की संसद अमीरों की संसद बनती जा रही है और देश गरीबों का बनता जा रहा है, इसलिए बेरोजगारी और महंगाई अपने चरम सीमा पर पहुंच रही है।
जी सर, तो ये थे डॉक्टर अनूप सर, जिन्होंने मोबाइल वाणी पर 15 अगस्त राष्ट्र के संबोधन या चुनाव का प्रचार मंच इस विषय पर अपनी प्रतिक्रिया मोबाइल वाणी पर साझा की। अनूप सर, मोबाइल वाणी को समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर।
जी योगेश भाई, नमस्कार।
छिंदवाड़ा वाले इन सबका दोस्त योगेश, धन्यवाद।